नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप दादू याजो से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दो दिन की सरकारी यात्रा पर फिजी के नादी पहुंच गए हैं। लोकसभा ने वर्ष 2024-25 के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों को चर्चा के बाद मंजूरी दे दी है। बांग्लादेश में पुलिस और सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पों से अराजकता फैल गई है। विश्व के प्रमुख सूचकांकों में पिछले सप्ताह बड़ी गिरावट के बाद आज वैश्विक बाजार में गिरावट दर्ज की गई। पेरिस ओलंपिक बैडमिंटन सिंगल्स में आज कांस्य पदक के लिए लक्ष्य सेन का मुकाबला मलेशिया के जिया ली से होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दो दिन की सरकारी यात्रा पर फिजी के नादी पहुंच गए हैं। उप प्रधानमंत्री विलियम गबोका और भारत के उच्चायुक्त पीएस कार्तिकेयन ने उनकी अगवानी की। भारत के किसी राष्ट्रपति की यह पहली फिजी यात्रा है। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने आज कहा कि उनके मंत्रालय ने एक पेड़ मां के नाम अभियान में अधिक भागीदारी के लिए सभी संसद सदस्यों को एक पत्र लिखा है। लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण संरक्षण और वन क्षेत्र बढ़ाने का अभियान शुरू किया है। केंद्रीय मंत्री ने अभियान को सफल बनाने के लिए एकजुट प्रयास की अपील की। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और युवा मामले और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने पेरिस में चल रहे 33वें ओलंपिक खेलों का जश्न मनाने के लिए आज चार स्मारक डाक टिकटों का एक सेट जारी किया। ये कार्यक्रम आज नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम पदक विजेता सरबजोत सिंह, स्टीपल चेज एथलीट सुधा सिंह और पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा भी शामिल हुए। ये टिकट भाला फेंक, फील्ड हॉकी, नौकायन और टेबल टेनिस जैसे खेलों के हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि सरकार खेलो इंडिया जैसी पहल के साथ देशभर से प्रतिभाओं का पोषण कर रही है, जो एथलीटों को आवश्यक सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस साल ओलंपिक में भाग लेने वाले 117 खिलाड़ियों में से 29 खिलाड़ी खेलो इंडिया से है। श्री मांडविया ने कहा कि ये टिकट खेल के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। लोकसभा ने वर्ष 2024-25 के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों को चर्चा के बाद मंजूरी दे दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि मोदी सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजटीय आवंटन 2013-14 के 33,278 करोड़ रुपए से बढ़कर 2024-25 में 90,958 करोड़ रुपए हो गया है। इसमें 164% की वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि कुल बजट में से 55% राशि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से खर्च की जाती है। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार धीरे धीरे स्वास्थ्य बजट बढ़ा रही है। वर्तमान में यह सकल घरेलू उत्पाद के 1.9% तक पहुंच गया है। श्री नड्डा ने यह भी कहा कि आयुष्मान भारत, मुफ्त दवा तथा निदान सेवा और मुफ्त जांच के कार्यान्वयन के कारण रोगी के अपनी जेब से किए जाने वाले 62% खर्च से घटकर 47.1% हो गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र के बुनियादी ढांचे के बारे में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि कुल 22 एम्स स्वीकृत किए गए थे, जिनमें 18 चालू है और 4 निर्माणाधीन है। श्री नड्डा ने आगे बताया कि सरकार मरीजों को गुणवत्तापूर्ण और सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना लागू कर रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत जन औषधि केंद्रों के कुल 13,000 आउटलेट चालू है और मोदी सरकार ने अगले 5 वर्षों में ऐसे 25,000 और केंद्र खोलने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट 2024-25 में की गई पहल का दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। रक्षा प्रमुख अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान नई दिल्ली में शीर्ष स्तरीय त्रिसेवा वित्तीय सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। सम्मेलन का उद्देश्य सशस्त्र बलों के वित्तीय मुद्दों में सहयोग और तालमेल बढ़ाना है। सम्मेलन के दौरान रक्षा वित्त में विभिन्न हितधारकों के परिप्रेक्ष्य को समझने और रक्षा खरीद में आने वाली चुनौतियों का समाधान खोजने के पहलुओं पर चर्चा होगी। सम्मेलन का आयोजन एकीकृत रक्षा स्टाफ के मुख्यालय द्वारा किया जा रहा है और ये सशस्त्र बलों में एकीकरण और संयुक्तता पर चल रहे अभियान के लिए निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप है। बैठक में रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, रक्षा लेखा महानियंत्रक, सेवाओं के एकीकृत वित्तीय सलाहकार और सरकारी ई मार्केट प्लेस के अधिकारी भाग ले रहे हैं। पत्रकारों से बात करते हुए एयर वाइस मार्शल अनिल सबरवाल ने कहा कि आज का विषय वित्तीय एकजुटता और तालमेल को बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि सभी सशस्त्र बलों के पास चुनौतियों से निपटने के लिए अत्याधुनिक उपकरण होने चाहिए। मेजर जनरल संदीप नारंग ने कहा कि देश को आगे बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन के दौरान तीनों रक्षा बल, थल, वायु और नौसेना उन्हें आवंटित बजट के साथ आगे बढ़ने के सभी तरीकों पर चर्चा करते हैं। बांग्लादेश में पुलिस और सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पों से अराजकता फैल गई है। देशभर में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने आज ढाका तक लंबे मार्च का ऐलान किया। सरकार ने अशांति को रोकने के प्रयास में देश के कई हिस्सों में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया है और मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया है। जम्मू कश्मीर में अधिकारियों ने आज सुरक्षाकर्मियों से अमरनाथ यात्रा को एक दिन के लिए स्थगित कर दिया है। आकाशवाणी जम्मू संवाददाता ने खबर दी है कि खुफिया सूचनाओं के मद्देनजर भगवती नगर आधार शिविर से यात्रा स्थगित रही। अखनूर और जम्मू के अन्य सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस बीच अनुच्छेद 370 को हटाए जाने की पांचवीं वर्षगांठ के अवसर पर बीजेपी आरएसपुरा में एक विशाल रैली आयोजित करने वाली है। इस रैली में पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी मुख्य अतिथि होंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच इसराइल पर ईरान और हिजबुल्ला की संभावित जवाबी कार्रवाई के बारे में G7 देशों के विदेश मंत्रियों को कड़ी चेतावनी जारी की है। ये चेतावनी हाल में हिजबुल्ला और हमास में प्रमुख हस्तियों की हत्याओं के मद्देनजर आई है। विश्व के प्रमुख सूचकांकों में पिछले सप्ताह बड़ी गिरावट के बाद आज वैश्विक बाजार में गिरावट दर्ज की गई। अमेरिका में शुक्रवार को अर्थव्यवस्था में मंदी की आशंकाओं के बाद एशिया के शेयर बाजारों में कमी दर्ज की गई। जापान में निकेई 225 और टॉपिक्स इंडेक्स दोनों दोपहर के कारोबार में 10% से अधिक नीचे थे। निकेई 225 स्टॉक इंडेक्स ने अपनी सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की। सूचकांक संक्षेप में 4000 अंक से अधिक गिरा। इसने 1987 में ब्लैक मंडे दुर्घटना में 3836 अंक की पिछले रिकॉर्ड गिरावट को तोड़ दिया। दूसरी ओर बैंक ऑफ जापान द्वारा पिछले सप्ताह ब्याज दरें बढ़ाने के बाद से जापानी मुद्रा येन अमरीकी डॉलर के मुकाबले मजबूत हो रही है, जिससे विदेशी निवेशकों के लिए टोक्यो में स्टॉक अधिक महंगा हो गया है। एक मजबूत येन जापानी सम्मान को अधिक महंगा बनाता है और परिणामस्वरूप संभावित विदेशी खरीदारों के लिए कम आकर्षक होता है। एशियाई प्रशांत क्षेत्र में अन्य जगहों पर ताइवान का मुख्य शेयर सूचकांक और दक्षिण कोरिया का कोस्पी दोनों 8% से अधिक गिर गए। हांगकांग में हैंग सेंग 1.4% नीचे था, जबकि शंघाई स्टॉक एक्सचेंज स्पट रहा। ऑस्ट्रेलिया में ASX लगभग 2% नीचे था। शुक्रवार को न्यूयॉर्क में शेयरों में भारी गिरावट आई, जब आधिकारिक नौकरियों के आंकड़ों से पता चला कि अमरीकी नियोक्ताओं ने जुलाई में उम्मीद से बहुत कम नौकरियां जोड़ी। पेरिस ओलंपिक बैडमिंटन सिंगल्स में आज कांस्य पदक के लिए लक्ष्य सेन का मुकाबला मलेशिया के जी जियाली से होगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 6 बजे से खेला जाएगा। कल सेमीफाइनल्स में लक्ष्य सेन को डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसन से हार का सामना करना पड़ा। वे ओलंपिक सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अब तक केवल 2 महिला खिलाड़ी साइना नेहवाल और पीवी सिंधु ने भारत के लिए ओलंपिक पदक जीते हैं। भारत की महेश्वरी चौहान और अनंतजीत सिंह नारुका आज स्किट शूटिंग मिक्स टीम स्पर्धा में उतरेंगे। भारतीय महिला टेबल टेनिस में श्रीजा अकुला, मनिका बत्रा और अर्चना कमात की टीम आज क्वार्टर फाइनल्स में जगह पक्की करने के लिए रोमानिया का सामना करेगी। आज ही एथलेटिक्स में महिलाओं की 400 मीटर दौड़ के राउंड वन में किरण पाहल और 3000 मीटर स्टीपचेज फाइनल में अविनाश सावले की भागीदारी होगी। कुश्ती में निशा दहिया 68 किलोग्राम फ्री स्टाइल प्री क्वार्टर फाइनल में भारत के अभियान की शुरूआत करेंगी। विष्णु सर्वनान और नेथ्रा कुमानन पुरुष और महिला डिंगी स्पर्धाओं में अपना अभियान जारी रखेंगे। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।